أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا الله في الرحاء يذكركم في الشدة. وكما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. كلمة بزرگ دوستو، آج میں اپنی بات ایک بڑے پرانے واقعے اور قصے سے شروع کروں گا. 1980 میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جانا شروع کیا تھا گلشن اقبال کراچی. پہلے دن حضرت کا جو مضمون سنا وہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرو، اللہ کا عاشق بن جاؤ. حضرت کا مضمون یہی تھا. ہم طالب علم لوگ ہوں، ہم مولوی لوگ ہیں، تھوڑے سے لاجیکل ہوتے ہیں. لوگ تو سمجھتے ہیں یہ ایسی ہیں، لیکن لاجیکل ہوتے ہیں، ہر بات کی عزت اور دلیل تلاش کرتے ہیں. اب ہم دو تین ساتھی تھے، ہم جب باہر نکلے ہوں گے، یا اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کریں. دنیا میں تو کسی سے محبت ہوتی ہے جب انسان محبوب کو دیکھتا ہے، زندگی کے کیسے عاشق ہو جائے. لیکن اگلے جمعے پھر حاضر ہوئے، جمعے کو حضرت کی مجلس ہوتی، جمعے سے پہلے تقریباً 11 بجے ختم ہو جاتا، وہ لوگ اپنی جگہ پر پڑھتے. لیکن دو تین مجلسوں کے بعد دل کا رجحان اللہ کی طرف ہونا شروع ہو گیا. بڑی حیرت ہوئی میں شکو ڈاکٹر عبداللہی صاحب فرماتے ہیں، ان سے ملنے کے یہی ایک راہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر. اور حضرت والا کے ساتھ بھی تعلق بڑھتا چلا گیا، محبت کا تعلق. پھر ایک بار یہ واقعہ پیش آیا جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. دل کو ایسے محسوس ہوا کہ مجھے شیخ کے ساتھ، حضرت کے ساتھ محبت کم ہو گئی. یہ چیز بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں. یہ پہلے جیسے آپ کے ساتھ تعلق قلب میں تھا یا اپنے شیخ کے ساتھ تھا، اب نہیں رہا. اس کے علاج کے لیے میں شیخ کے پاس پہنچا. اس زمانے میں جامعہ اسلامی بنوری ٹاؤن میں بڑی سختی ہوتی تھی. طالب علم کو جمعرات کی اثر میں ہوش آتا تھا کہ بھی میں دنیا میں رہتا ہوں. کتنی سمجھ، پورے ہفتہ رات کو 12 بجے سونا، اور پھر صبح فجر میں اٹھنا، اور پھر سارا دن بھرائی، پھر شام کو پھر یہی. اب نکلنا آسان نہیں تھا. اگر آپ قادری اچانک لگ جاتی پوری مدرسے، اگر آپ غیر حاضر ہو گئے، تبھی تھوڑی سی تاخیر بھی ہو گئی، جیسے آپ واش روم گئے تو غیر حاضر کر دیں گے، آپ نہیں تھے. میں حاضری رات کو لگتی تھی، رات 10 بجے، کبھی 11 بجے، کبھی عشاء سے پہلے، کبھی عشاء کے بعد. دن کی حاضری تو اساتذہ لیتے، لیکن یہ اچانک حاضر. اور پھر اس حاضری پر سزا کیا ملتی تھی؟ جمعے والے دن وہ روزہ رکھ کے اعتکاف کرنا ہے بس، اور اتنے نفل پڑھنے. اب اثر کے بعد جانا اور اثر سے ملک سے پہلے آنا، پھر بھاگ دوڑ کر کے حضرت یہاں پہنچے. رتوال رحمت اللہ علیہ، اس وقت ایسی ترتیب نہیں تھی جو اس وقت خانقاہ کی ہے، ہاتھ لگی ہوئی تھی، وہاں پر موڑے رکھے ہوئے تھے. موڑوں پر حضرت تشریف فرماتے تھے، اثر کے بعد لوگ آتے تھے. ابھی حاضر ہوا، میں نے حضرت سے سوال کیا، حضرت مجھے آپ سے محبت کم محسوس ہوتی. اور فرمایا کہ ذکر میں کمی ہو گئی ہے. ذکر آج جو ہمیں तमाम वो चीजें जो अल्लाह का पता देती हैं, उन चीजों का कशिश ना होना, इसकी बुनियादी वजह खुदा को याद ना करना है। तो घर से हम बहुत तिलावत करते थे, अब दिल नहीं चाहता, पहले मजलिसों में याद नहीं करता। जाती जो माबूल होता है, आप मुझे बताएं आप कितने दिन भर काम करते हैं? ये काम आप इसलिए कर पाते हैं कि आप अपनी जाती हेल्थ के लिए सुबह को नाश्ता करते हैं, दोपहर को रोटी खाते हैं, शाम को खाना खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, दूध पीते हैं। अब ये जो आपकी हेल्थ बनती है, उस हेल्थ से आप अपना दफ्तर चलाते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, दरसो तदरीस करते हैं, लेकिन उसके पीछे है क्या चीज? उसके पीछे वो खुराक जो आपने खाई थी, उस खुराक ने आपकी ये सलाहियत पैदा की कि आप मुख्तलिफ किस्म के काम अंजाम दे रहे हैं, बाद में जिक्र की पाबंदी करता है, इससे वो रूहानी ताकत पैदा होती है जिससे रूहानी काम अंजाम देता है।
फर्स्ट
फरमाया फज़कुरूनी, इसलिए फरमाया फज़कुरूनी, मुझे याद करो, पहले अल्लाह ने अपने को याद करने का हुक्म दिया है। मेरे शेख फरमाते थे, आज हमारी जिंदगी में मामूलात नहीं है, मामूलात है ही नहीं, बस ऐसे कर लिया, बस ये मामूल थोड़ी कहलाता है। पैगम्बर सलाम से बढ़कर कौन सी रूहानी, रूहानियत के एतबार से कौन सी बड़ी शख्सियत होगी? अम्बिया सलाम भी जिनके मुक्तदी थे, उन्हें कहा जाए या मुजम्मिल कलीला, आप रात को हमारे सामने खड़े हो, आप हमसे लें, रात को पैगंबर सलाम खड़े हो रहे हैं, हदीस शरीफ में आता है, पांव पर वरम आ जाते थे, आबा फरमाते थे, अर्ज करते, हजरत आप इतनी मशक्कत क्यों करते हैं? फला आपून अब्दुल शकूरा, मैं अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा ना बन। फिर दिन को तकसीम करते, इन्ना लका फिन नहारे सब हम कबीला, वस्त उस्मा रब्बी, अपने रब को याद करें, जिक्र बताया जा रहा है सुनत, अपने रब को याद करें, मतबत ले ली ही तबकीला, जबान से जिक्र करें और दिल से सबसे मुनकते होके मौला हो जाए। इन दोनों की एहतियात बताएंगे, जबान से क्या करना है, अल्लाह को याद रखो, इस्मा रब्बी का, अपने रब का नाम, क्योंकि हमें उस्ताद मुफ्ती वली खान चौकी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपने तक पहुंचने के लिए अपना नाम दिया है, बहुत बहुत बड़ी नेमत है, खुदा का नाम हमने दिया हुआ है, देखो ये है, इसी तरह मुझ तक पहुंच जाओ, इसको तुम चाहो मुझ तक पहुंचो, ये नाम लो तो इसलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते ना काम, ये नाम लो मेरा, ये तुम्हारा काम हो जाएगा। आप इसका अंदाजा करें नाम लेने की कितनी अहमियत है। हर काम से पहले उसने फरमाया कि हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, वरना ये काम मनहूस है और ये काम मुनकते है, ये काम सिरे चढ़ने वाला नहीं है, अगर सिरे चढ़ भी जाएगा तुम्हारी नजर में नतीजा देने वाला नहीं है, याद रखो। फिर आपने खाली बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े, वो खा पेट चला, पेट भर गया, लेकिन उसका वो नतीजा मुरतब नहीं होगा जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ कर। इसलिए हमारे उस्ताद फरमाया करते कि अल्लाह ने ये जो हर काम से पहले अपना नाम साथ लगा दिया, आप बताएं कोई ऐसा काम है जिसमें अल्लाह का नाम पहले ना हो? बिस्मिल्लाह रहमान तो कम अज कम है ना, वरना और दुआएं भी इसमें ऐड है उसमें। तो फरमाया करते थे मुफ्ती वली हसन टोंक रहमुल्ला कि ये अल्लाह ताला बताना चाहते हैं कि जो मेरे आशिक हैं, जो मेरे बंदे हैं, उनमें और गैरों में फर्क ये है कि मेरा बंदा कोई काम ना अपने नाम से करता है, ना अपनी एतमाद से करता है, बल्कि हर काम में पहले मेरी जात को लाता है, उसके बाद काम का अंजाम देता है। ये दलील है कि ये मेरे बंदे हैं, ये मेरा नाम दे रहे हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अपने नाम दिए हमें अपने तक पहुंचने के लिए, ये जो अल्लाह का नाम दिए आज इतना आसान है, अगर इतना आसान होता अल्लाह अल्लाह करना तो पूरा आलम कर लेता कि आप जिस माहौल में रहते हैं यहां तो सारी कर लेते, या हमें पीछे छोड़ देते। हसीब रही बिन अदब रहमुल्ला फरमाते थे, अगर लोगों को पता चल जाए हम ये हुजरों में बैठे हुए, मदरसों में बैठे हुए और खानकाहों में बैठे हुए, मस्जिदों में कौन सी दौलत कमा रहे हैं, ये तकड़े लोग आए और हमें वहां से निकाल कर खुद वहां बैठ जाए, लेकिन अल्लाह ने छुपा दिया है। जन्नत का रास्ता जो है ऊपर बिल मकार है, ऐसी चीजों से छुपा दिया है कि जिसको देखकर अगले को डर लगता है, यार ये बड़ा मुश्किल काम है, हालांकि मुश्किल नहीं, अंदर तो मजे हैं, बाहर से लग रहा है, अंदर बस है। और गुनाह के काम, अल्लाह से दूरी के काम ऊपर से सजा दी, हो बहुत मजा है लेकिन अंदर जाता है। इसलिए हजरत किसी सलात तो सलाम से किसी ने सवाल किया, हजरत क्या बात है, नेकी करने में मुशक्कत दिल को होती है, नफ्स को तकलीफ होती है, और गुनाह करने में फौरन मायल हो जाता है। बड़ी खूबसूरत बात फरमाई, फरमाया कि नेकी के आगे कड़वाहट है पीछे मिठास,
वाह
आगे कड़वाहट है पीछे मिठास है, बस एक दफा उस कड़वाहट से गुजरना होता है फिर मीठी ही मीठी, और ऐसी मीठी कि कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो जो नेकी है वहां तक माफ, क्योंकि नेकी अल्लाह के वहां जमा हो गई वो खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए कोई अकीदा हमारा नहीं है कि भाई कोई ऐसा गुनाह हो जो नेकी के वजूद खत्म कर दे, वजूद खत्म नहीं होता वरना तोली क्या क्यों लगेगा। हाँ उसके बरकात उसके अनवारात ये जाय हो जाते, नेकी खत्म नहीं होती। और जो गुनाह है वो आगे से मीठा है पीछे से कड़वा है, उसकी कड़वाहट रूह महसूस करती है बाद में, कब्र तक में और आखरत में भी तंग करे। कहते इंसान जितने गुनाह करता है यही सांप बिच्छू बनेंगे, कोई अलग चीज नहीं होगी, यही सांप बिच्छू बनेंगे। एक आदमी अपने हाथ से गुनाह करता है तो उसके हाथ में गुनाह करते ही आग रख दी गई उसके हाथ में, आग है इसमें, आग है। आंख से गुनाह करता आंख में आग है, कान से करता कान में आग है। जिस उज्व से गुनाह करेगा उसमें आग और फायर का मादा रख दिया, जिस तरह माचिस की तीली पर लगा होता है, तो माचिस की तीली पर जलो जेब में डाल लो तो कभी आग नहीं लगती, लेकिन जब रगड़ा खाता ना ऐसे मैच के साथ ऐसे रगड़ा तो वो मादे में से आग बाहर आ जाती है जो उसके अंदर छुपी हुई है। जब कब्र का रगड़ा लगता है उस आदमी को आग लग जाती है, क्योंकि तो वो आग पहले से अंदर लेकर आया है, बस कब्र के रगड़े की जरूरत है। ऐसे रगड़ा लगा हाथ को आग लग गई, क्योंकि हाथ से गुनाह की, आग को आग लग गई, जिस्म को आग लग गई। यही नेकी करता है तो अनवारात और नूर रख दिया जाता है उसमें, तो ही आखरत में जाएगा ठंडक देना शुरू कर देगा, उन्हीं इसी हाथ में ठंडा कर उसी वही जन्नत बन जाएगी, वही सारा कुछ हो जाएगा। तो फरमाया कि फस कुरू नहीं, मुझे याद करो, फस कुरू को नतीजा बताया कि फिर मैं तुम्हें भी याद करूं। हम चाहते हमारा मौला हमें याद करे, हम मौला को याद रखें, याद करना एक होता याद रखना, सुन लो दोनों का फर्क, याद करना और जिक्र करना। जैसे हम अभी जिक्र के लिए बैठे, नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, हज उमरा कर रहे हैं, एक होता है याद रखना। याद रखना क्या है कि जब नफ्स और शैतान गुनाह के लिए हमें कहें तो हमें यह मौला याद होना चाहिए, नहीं भाई हम किसी के हैं। कहते याद रखना, उसको जबान जब अल्लाह का नाम न ले मतलब गुनाह, लेकिन आप हिम्मत करके गुनाह से बच जाए, बस इस पर आपको विलायत और दोस्ती का टाइटल दे दे, अल्लाह जबान से हमने कुछ नहीं किया। अरे मेरे शेख फरमाया करते थे आरिफ बिल्ला हजरत मौलाना शाह की वक्ता रहमतुल्लाह अलैह, कि जैसे जितना तकवे लिए इखलास है किसी अमल में नहीं हो सकता। इसलिए कि हर अमल जो नेकी करते हैं वो कभी जबान से भी कह देता है, यार इस साल अलहमदुल्ला मैं हज करके आया हूँ, इस साल मैंने फलाने मस्जिद में इतने पैसे दे दिए, कह देता है। लेकिन कोई ये कहेगा यार फलाना गुना मेरा दिल चाह रहा था करने को, मैंने नहीं किया, कोई कहेगा इस बात को, बिल्कुल नहीं कहेगा। मैं तकवे भी तो इखलास के बिल्कुल आखिरी मकाम है, तो उसका इजहार भी नहीं कर सकता किसी के सामने कि मैं करना चाहता था और मैं उस गुनाह से बच गया, उसका इजहार भी नहीं करेगा। अच्छा हम तो यार तो बहुत अल्लाह वाला समझते थे, इसके दिल में ऐसी बात आती है। हस्तुरुन हस्तुरुकुम, यकीम उल मुत्थान रहमतुल्लाह फरमाते थे कि जिक्र का सबसे बड़ा जो इनाम है वो ये है कि हमारा मौला हमें याद करता है। इसलिए अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को नसीहत फरमाई, और बाद ये रिवायत आम है बाद में अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के लिए, इब्न अब्बास मुस्कुरिल्ला फिर रखा, इन दिनों में तुझे राहत है सुकून है, खूब अल्लाह को याद किया कर, खूब अल्लाह खूब जिक्र कर, अपना वक्त को जिसमें फरागत है, जिसमें कोई मुश्किल नहीं, कोई मुकाम नहीं, कोई मुसीबत नहीं, खूब अल्लाह को याद कर, तो नतीजा क्या होगा, जब कुर को फिर शिद्दा, जब कभी तकलीफ का वक्त आएगा मौला खुद तुझे याद करेगा, कहना नहीं पड़ेगा, जब गुरु को फिर सीधा। और मेरे शेख बड़ी अजीब बात फरमाते थे, मैं एक आदमी जिक्र अस्कार करता है, अल्लाह को याद करता है, तिलावत को मामूल है, एक मामूल बनाया हो, ये जिंदगी में मामूल बहुत अहम है, उसका कुछ मामूल होना चाहिए, ये थोड़ा हो। अब वो मामूल नहीं कर पा रहा, कोई मुश्किल आ गई, बीमार हो गया, अब लाजिम बात है बीमार होने पर वो मामूलात नहीं कर पाते, या कोई उस पर मुसीबत आ गई जिसकी वजह से परेशान है, अब ध्यान से ना जिक्र हो रहा है ना तलाब। तो मेरे शेख फरमान अल्लाह फरिश्तों से पूछते हैं कि फलाना बंदा जो है आजकल हमारे दरबार में नहीं है, वो कहते हैं अल्लाह वो तो बीमार है, अल्लाह वो तो मुसीबत में, फरमाया जल्दी उसको सेहतमंद करो, जल्दी उसकी मुसीबत दूर करो ताकि दोबारा हमें याद करना शुरू
अच्छा
करें। हकीमुल्लाह थानवी रहमुल्लाह ने भी लिखी ये बात कि एक ही तरह की मुश्किल अल्लाह के प्यारे पर आती है और वही मुश्किल अल्लाह से दूर रहने वाले पर आती है, ताकि दूर रहने वाले की गर्दन से मुसीबत उतरती नहीं और अल्लाह के प्यारे के हाथ से जल्दी खत्म हो जाती है। यही राज है, जब कुर्कू से शिद्दा, इंसान की जिंदगी में अच्छे बुरे हालात लिखे हुए हैं, लेकिन जो अल्लाह से राबता रखते हैं उनको तस्वीर दिखाई जाती है, शेर की, शेर नहीं आता, शेर की तस्वीर दिखा देते हैं, बस काम बुरा हो, आग की तस्वीर दिखा देंगे, आग नहीं होगी, और अगर नहीं दूसरा है तो शेर भी आएगा आग भी आएगी, फर्क है, क्योंकि अल्लाह ताला की एक निजाम, उस निजाम में से हम सबने गुजरना है, अगर किसी के अच्छे हालात बुरे हालात सब ठीक आता है, तो फरमाया कि देखो इससे बचने का क्या तरीका है कि बुरे हालात में तुम आसानी से निकल जाओ, उज़्कुरुल्लाह फिर रखा, राहत के दिनों में याद करो, कभी भी राहत के दिनों को जाया नहीं करना चाहिए, जब आप इत्मीनान में है चैन में है, जब भी वक्त मिले मौला को याद करने की कोई तरकीब बनाओ, तिलावत कर लो, जिक्र कर लो, फिक्र ही कर लो, सोच ही लो अल्लाह ताला, पैसे ना समझो बस ठीक है थोड़ा बहुत कर लिया, क्योंकि ये आप सारा कुछ किसके बचाएंगे, सख्त हालात के लिए, और अब सबसे ज्यादा सख्त हालत आखरत की है, जब आदमी दुनिया में आखरत से जाता है वहां मौला तुम्हें याद करेंगे, भाई ये हमारा बंदा आ रहा है, कितने बारे में अल्लामा करतबी ने कितने वाकत लिखे कि अल्लाह ताला पहले से हुक्म दे देते हैं फरिश्तों को, देखो जाने वाला हमारा प्यारा है, ध्यान से सारा काम करना, चुनाचे हदीस शरीफ में भी इसका इशारा मिलता है, जब उसे सवाल जवाब करते हैं और वो जवाब दे देता है तो हदीस शरीफ में आता है इन्ना लना अलम फरिश्ते, पहले कहते हैं हमें पहले से इलम था, इन्ना लमुकिन उनके, तो यकीन वाला बनता है, ये पहले से किसने बताया तुम्हें भाई, ये अल्लाह पहले ही बता देते हैं ये आने वाला ये मुमकिन आदमी है, इसलिए बाज रिवायात में तो ये भी आता है कि रहमत के फरिश्ते भी पीछे आ जाते हैं और कहते घबराने की जरूरत नहीं है, सवालों का जवाब दो, क्योंकि फॉर्मेलिटी है कि हम आए हुए हैं, हम आए हुए हैं, ऐसी है ना कि आप कहीं जाए और वहां प्रोटोकॉल भी आपको मिल रहा हो, लेकिन धोखा तो लगेगा ना, आपकी तस्वीर भी बनेगी एयरपोर्ट पर, लेकिन वो लेने वाले आए हुए हैं वो भी हुकूमत के बंदे हैं, आपके दिल पर जरा वसवसा होगा कि यार पता हमें रोक ना दें, डिपोर्ट ना कर दें, ये ना कर दें, वो ना कर दें, ऐसा कभी वसवसा नहीं आएगा। जैसे हम जाम्बिया गए 2009 में, 2009 में हम जाम्बिया गए, तो दो साथी थे शलवार कमीज में, हम दो ही साथी थे, पहले हम कीनिया आए फिर कीनिया से आगे, तो वो तो आपको बताया वो जो जाम्बिया में अक्सर लोग सयाहत के लिए जाते हैं, जंगलों की सयाहत है, विक्टोरिया फॉल बड़ी मशहूर वहां पर दुनिया का नौवा अजूबा है, उसके लिए तो पूरा जहाज ऐसे सयाहों से भरा हुआ, तो अंग्रेज और वो, और पूरा जहाज हम ही देख रहा था, जो देखा वैसे देखो, उनके लोग जरा हालात भी थोड़े से ऐसे टाइट थे, तो आप सब हमें देख रहे हैं, हमें बड़ा हो अख्तर भाई हमारे साथ थे, वो कहते हैं भाई हजरत जी सब हमें ऐसे घूर रहे हैं कि पता नहीं हमें कुछ है, और जब वहां पर हम उतरे, उतरने के बाद अब अच्छा हमें भी वसों से आने लग गया कि भाई पहली दफा जा रहे थे, क्या सारे लोग हमें अजनबी निगाहों से देख रहे हैं, पता नहीं अल्लाह घर फरमाए आगे क्या होगा, हम जब जब उतरे इतनी देर में हम क्यों लगी, जब क्यों लगी तो वो आग, दो अफसर आ गए पहने हुए अपनी वर्दी, मेरा नाम दिया मिस्टर जलील, तो हर दिन ये पकड़े गए, तो यही है बस यही है पकड़े गए, अब उन्होंने हमारे पासपोर्ट कहा, फिर उन्होंने बताया कि फला साहब बाहर आपको लेने के लिए आए हुए हैं, उन्होंने हमें मुकर्र किया है और ऐलान किया क्यों वालों से, आपको सबको इंतजार करना होगा, हमारे वीआईपी मेहमान है, ये जब तक बाहर नहीं चले जाएंगे सामान से बाहर, उस वक्त तक ठप्पा नहीं लगने वाला, तो बहुत परेशान है लोग, तो कौम में ये अजीब बात है,
अच्छा
یعنی میں بعض حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے اس بندے پر یہ فضل ہوتا ہے کہ جب سوال جواب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے بھی وہاں جاتے ہیں تائید کے لیے، تاکہ اس کا حوصلہ رہے. اس لیے قبر کے پاس کچھ دیر رکنے کا حکم ہے کہ آپ قبر کے پاس کچھ دیر رکو تاکہ اس کو آپ سے انسیت حاصل ہو، مرنے والے کو انسیت ملتی. یذکر کو پیچھے شدہ میں، اس سے بڑھ کے شدت کیا ہے جو آخرت کی شدت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ وہاں بھی ان کا تعاون فرماتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ راحت کے دنوں میں زندگی میں مولا کو یاد کرتے رہے. تذکرون یذکر کو وشکرون ہی بنا سکتے ہو. نعمتوں کا ذکر بعد نہیں کیا ہے، پہلے مونین کا ذکر ہے، میرے شیخ فرماتے تھے کہ نعمتوں کا ذکر ہے اور شکر ادا کرو. وشکرو، شکر نعمت پر ہوتا ہے، ذکر ذات کا ذکر ہوتا ہے، مونین کا ذکر ہے. پہلے مجھے یاد کرو، بعد میں نعمتوں میں مشغول ہونا. ساری عبادات میں آپ تفصیل دیکھ لے کہ سب سے پہلے اپنے نام سے شروع، فجر ہوتی ہے اپنے نام سے شروع کراتے ہیں. دیکھو ہمارا نام لو سر شروع صبح سے. حدیث شریف میں آتا ہے جب آدمی سوتا ہے شیطان گاٹھے لگا دیتا اس کے ساتھ کہ نام مالک لین طویل، بہت لمبی رات ہے، سو رہا ہے. کیا وہ صبح اٹھتا ہے بسم اللہ پڑھ کر اور با پڑھتا ہے، گانٹھ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے پھر گانٹھ کھل جاتی ہے، جب نماز پڑھتا ہے ساری گانٹھیں کھل جاتی ہیں. اصبح نشیط نفس، بالکل تازہ دم ہو کر اٹھتا ہے صبح کو، اور پورا دن تازہ دم رہتا ہے. اور اگر نہیں قبول شیطان یا بال شیطان فیوز رہی ہے، اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے. یہ لوگ جو کرنی پڑتے انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے کان واش روم ہے شیطان کے. اب بتاؤ جو کان میں پیشاب کرے گا اور نحوست رہے گی، پورا دن منحوس رہتا آدمی، نہیں لگتا. کسی بزرگ سے کسی نے کہا کہ جی میرا کام صحیح نہیں ہوتا، میں سارا دن جاتا ہوں بس ایسی، ایک تو دل نہیں لگتا کان میں، پھر کوئی آتا بھی نہیں، کاک شاک بھی نہیں آتا. بہت سے ایسا منحوس میرے پیچھے لگ گیا ہے، کسی نے دم درود کر دیا ہے، کسی نے جادو، لوگ اس طرف دوڑ پڑتے، اپنے طرف توجہ نہیں دیتے. انہوں نے کہا فجر پڑتا ہے؟ نہیں جی وہ تو کبھی پڑھتا ہوں کبھی نہیں. کہا کہ آج نا شیشی میں دیکھنا تمہیں وہ شخص نظر آ جائے گا جس کی نوسط ہے، نہیں تو پتہ چل جائے گا تم خود منحوس ہو. تو میرے دوستو ذکر کا معمول بہت اہمیت کا حامل ہے. میرے شیخ فرماتے تھے سالکین بھی آج اس میں بہت سستی کرتے ہیں، کوئی معمول نہیں ہے کہ کوئی روزانہ ایک دو چار قسم کرے اللہ کے لیے، 5-10 منٹ بیٹھ جائے اللہ کا نام لے، تھوڑے کو تھوڑا نہ سمجھے. میرے شیخ فرماتے پوری تسبیح تو آدھی تسبیح پڑھ لو، لیکن نام تو لو نا تاکہ تمہارا بھی آسمانوں پر نام دیا جائے. اور پھر حدیث شریف میں صاف آتا ہے کہ اگر کہیں بیٹھ کر لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، حفت و ملائکہ فرشتے گھیر لیتے ہیں، رشد الرحمہ رحمت ان کو ناپ لیتی، نزل السکینہ سکینہ نازل ہوتا ہے. ایک جگہ قرآن کے بارے میں، ایک جگہ ذکر کے بارے میں. وذکرہم اللہ من عندہ، اور اللہ ان کو اپنے پاس والوں کو یاد کرتے ہیں کہ زمین پر فلاں جگہ لیسٹر میں فلاں جگہ بیٹھ کر میرے بندے مجھے یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. ہمارا وہاں تذکرہ ہوتا ہے، معمولی بات نہیں ہے اللہ کے دربار میں میرا آپ کا تذکرہ ہو. یہ تذکرہ ہی انسان کو پھر پوری زندگی ہدایت پر رکھتا ہے. اب بتاؤ جو خالق ملک اور خالق کائنات جن کو یاد کر رہا ہو آسمان جو پر، تو کیسے نفس و شیطان اس کو گمراہ کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم ان اس سبیل اور اس راستے کو اختیار نہیں کرتے کہ اللہ کے دربار میں میرا آپ کا تذکرہ ہو. فرمایا واضح ہے کہ تمہیں یاد کب کریں گے، تم جب انہیں یاد کرو. دنیا میں اگر کوئی یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ اور کیا سلوک کر رہا ہے، وہ یہ خود دیکھے. اگر وہ اللہ کو ہم وقت یاد رکھتا ہے، اللہ کے نافرمانی سے بچتا ہے، اللہ سے حسن زن رکھتا ہے، بس اس کو سمجھا اس کے ساتھ خیر ہی خیر ہے. جب یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق ہے تو اللہ تعالیٰ جو اس سے متعلق ہے. عجیب بات ہے کہ یہ تعلق اور ذکر اذکار دلیل اس بات کی کہ وہ چاہتے ہیں، اس لیے توفیق دیتے ہیں. اگر وہ نہ چاہیں کون نام لے سکتا؟ میں نے بتایا نا ساری دنیا نام لے لیتی، आज मुसलमान कम मैंने हैं, कभी कभी इंसान कहते यार भाई ये किसके देने पर है, भूसा ज्यादा होता है अनाज कम होता है, अनाज भूसा बाहर जानवरों के लिए फेंक देते हैं या आग वाले मामलात में उनको डाल देते हैं जिसमें आग जलाई जाती है, हमारे ईंटे बनाते थे भूसा इस्तेमाल करते हैं, और जो अनाज है घर में लाकर सेव किया जाता है। अल्लाह ताला ने दुनिया में इनको भी कबूल किया है, ईमान दिया है, जिक्र सार तौफीक दी है, कोई मामूली बात नहीं। लोग कैफियत के पीछे पड़ जाते हैं, हजरत थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं गैर इख्तियारी चीज के पीछे, ये मैं कैफियत सारी नहीं होती, जिक्र तो करता हूं कैफियत नहीं है, कैफियत का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि आप मौला को याद कर रहे हैं, बस ये सवाल कैफियत देना उनकी मर्जी पर है, कभी आती है कभी नहीं आती है। मेरे शेख फरमाते थे कभी कभी बहुत से लोगों को होता है दिल लग रहा है इबादत में फिर दिल नहीं लगता, उसकी दो वजह है, एक वजह वो ऐसा गुना हो जाता है जिससे इबादत की लज्जत छीन लेते, सबसे पहले ये नुकसान होता है इबादत की लज्जत छीन लेते, कोई ऐसी जरूर गुना और बेकैदगी हुई इबादत की लज्जत चली, और दूसरी वजह कभी आजमाते हैं लुत्फ के लिए इबादत करता है या लतीफ के लिए इबादत
वाह
करता है, मेरे शेख फरमाते हैं ये अब्दुल लुत्फ है या अब्दुल लतीफ है ये देखते। बस मेरे दोस्तों, मेरी मौ बहनों, जिक्र अस्कार को अपने मामूलात में शामिल करें, थोड़ा सा करें लेकिन रोजाना ध्यान से, थोड़ी देर ध्यान से कर लो बस, मेरे शेख फरमाते थे नीयत भी ये करें जिक्र से पहले अल्लाह इसलिए जिक्र करता हूं कि अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल हो जाए, और हमारे दादा मुर्शिद हजरत शाहबरान फरमाते थे हर नफली अमल में नियत करनी थी, कोई नफली अल्लाह इसलिए करता हूं आपकी मोहब्बत मिल जाए, क्योंकि तो मोहब्बत के हुसूल के लिए जिक्र और नफली इबादत बड़ी अहमियत की हामिल है, फर्ज तो आप पर फर्ज खुद तो ड्यूटी है, उन्होंने बड़ी प्यारी बात लिखी कि नफिल और जो जो फर्ज का क्या फर्क है, फरमाया कि फर्ज वो ड्यूटी है जो दोगे तो पगार मिलेगी तनख्वाह मिलेगी, और नफिल वो है जिसकी जो जाहिर काम अपने मालिक का करोगे, मौला का करोगे, अपने मालिक का करोगे दुनिया में, उसकी तवज्जो आप पर बढ़ जाएगी, दोस्ती बढ़ जाएगी। मेरे शायद फरमाते थे कि अगर एक आदमी 8 घंटे ड्यूटी देता है और दूसरा भी 8 घंटे ड्यूटी देता है, दो मुलाजिम है और एक 8 घंटे ड्यूटी के बाद अजर भी हो जाता है, और दूसरा वाला जो है वो घर में जाकर पूछता है जी मैं फारिग हूँ, को घर का काम काज हो, कुछ सौदा सर लाना हो, कोई ये करना, वो थोड़े थोड़े काम करता है, जब भी हज पर जाता है तो सबको आप जमजम खजूरें देता है, उसके लिए अलग से घड़ी अल असर घड़ी अल फजर घड़ी या कोई जायज चीजें खुशबू लाकर उसको देता है, वो मुलाजम पहले वाला कहता है जी हम भी आपके मुलाजम थे, आपने उसको इतनी चीजें दी और हमें आपने सिर्फ खजूर पानी दिया, कहता है भाई तुम ड्यूटी करते थे, बाद में कभी पूछा, ये तो बाद में भी मेरे पास आता जाता था। हजरत थानवी फरमाते हैं जब इंसान जिक्र अस्कार तिलावत नफली इबादत करता है उससे अल्लाह ताला की इनायात और मोहब्बत को खींचता है, पड़ जाती है अल्लाह ताला की इनायात उस बंदे पर पड़ जाती है, इसलिए तकर्रबा नफिल पढ़ते पढ़ते हदीस में आता है कि वो एक बारिश पढ़ता है मैं दो बारिश पढ़ आता हूँ, दो बारिश आता है मैं एक हाथ आता हूँ, पूरी रिवायत मौजूद है नफली इबादत पर, इसलिए अपने मामूलात में जिक्र को जरूर शामिल करें, इसकी बड़ी ताकीद है, जिक्र और सोबत बहुत अहमियत की हामिल है, कि सोबत जहां मिले थोड़ी ना समझो थोड़ी भी बहुत है, क्योंकि सोबत हर वक्त मैसर नहीं होती लेकिन जिक्र हर वक्त मैसर है, बल्कि जहां भी वो बड़े होते हैं उनके फैजान उसको वही मिलना शुरू हो जाता है, उनको उसका दिल जैसे मैंने बताया ना शेख ने कहा जिक्र करो, क्योंकि जिक्र करने से दिल जिंदा होता है, और जब दिल जिंदा होता है तो फिर वो अनवारात को खींचता है, शेख के अनवारात से शेख से भी लेता है, खिलावत से भी जिक्र अस्कार हर शेख से उसको फिर अनवारात मिलना शुरू हो जाते हैं, तो उसका दिल जिंदा है, जिस तरह जिंदा बच्चा जो है वो माँ के पिस्तानों से दूध चूसता है, इसी तरीके पर अगर मुर्दा हो तो हजार उसको लगाए रखे वो कभी भी एक कतरा भी दूध नहीं पी सकता, और हदीस शरीफ आता है जो हमें याद करता है वो जिंदा की तरह है, मैं याद नहीं करता वो मुर्दा की तरह, बस अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, जिक्र से पहले नियत से करने से जिक्र करता हूँ अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. دل میرا ہو جائے ایک میدان تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آپ و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، لا الہ الا اللہ، 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 لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه بارك وسلم. یار رہے یار تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سر شار رہوں، خوش رہے نا مجھ کو کسی کا، تیرا مکر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تاد میں آخر، پھر دے زبان ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا إله إلا الله، 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 لا إله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ایک قسم اس میں ذات لفظ اللہ کی فرمائے، پہلے اللہ پر جل جلالہ کہے، اور یہ تصور کریں ایک زبان منہ میں دل میں دونوں سے بکوت اللہ نکل رہا ہے، اور اس گھر کی در و دیوار، خانقاہ کی در و دیوار، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے ساتھ اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہے. اللہ جل جلال و تعالی شان، اللہ 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 جل جلال و تعالی شان، اللہ اللہ ایچے شیرین است نام، شیر شکر می شود جانم تمام. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. الکرم عشق معزولم مکن، جز بذکر خیش مشغولم مکن. ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے واشت ہو گئی. عشق میں ذلت بعزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. مٹا دے اپنی ہستی کو، جھونک دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ و تعالی جان میں دس بار استغفار پڑھ لیں. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، 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 رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. دس بار یہ درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی، 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 صلی اللہ علی النبی الامی.